તારીખ 16/5/1996 શ્રી સમયસર કલશ ટીકા શ્લોક નંબર 152 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 86 મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
કર્મ કે ઉદયને ઉદય અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરતા હૈ, ઉસમેં શુભ પ્રવૃત્તિ ભી હૈ ઔર અશુભ પ્રવૃત્તિ ભી હોતી હૈ. દોનો પ્રકાર કે પ્રવૃત્તિ પૂર્વ કર્મ કે ઉદય અનુસાર હોતી હૈ. ફિર ભી સમ્યક દ્રષ્ટિ તો રંજક પરિણામ સુધી હોને ઓર ઉદય ભાવ છે ઓર ઉદય કી સામગ્રી છે ભિન્નપણે કા અનુભવ ભિન્નત્વ કા અનુભવ રહેતા હોને ઉનકા સંબંધ છૂટ ગયા, અંતરંગ સંબંધ પરિણામો સે છૂટ ગયા તો આત્મા સે સંબંધ છૂટા હોને છે, આત્મા કા સંબંધ છૂટ ગયા હોને છે, ઉસકો બંધ નહીં હોતા હૈ, વો કલશ કા વિષય હૈ, ઉસ કલશ કા જો વિષય હૈ વો ઉતના વિષય હૈ. હા, સમજ મે નહીં આયા. સમ્યક દ્રષ્ટિ તો પૂર્વ કર્મ કા ઉદય હોતા હૈ. અજ્ઞાન ભાવ સે જો કર્મ બંધા થા તો જ્ઞાન દશા મેં ઉદય મેં આતા હૈ. જબ જ્ઞાન દશા મેં ઉદય મેં આતા હૈ તો દો પ્રકાર કા ઉદય હોતા હૈ, શુભ પ્રવૃત્તિ કા ઓર અશુભ પ્રવૃત્તિ કા. ઉસકો શુભ ઉપયોગ ભી હોતા હૈ ઓર ઉસકો અશુભ ઉપયોગ ભી હોતા હૈ. પરંતુ ભીતર મેં ઉસસે ભિન્નત્વ રહેતા હૈ, યાને આત્મા કા સંબંધ છૂટ ગયા હૈ ઉન ભાવો સે ઓર ઉન સામગ્રી સે, અપનત્વ નહીં રહેતા, ઇસલિયે ઉનકે આત્મ પરિણામ ઉસકે સાથ સંબંધ નહીં કરતે, યાને રંજાયમાન નહીં હોતે. ઇસલિયે સંબંધ નહીં હોને સે બંધ નહીં હૈ, ઉસકો નિર્જરા હૈ, એની તરફ કા વિષય હૈ. અત્યાર તરફ અરે 52 ખંડાનુભૂત સહિત અર્થ તત્મુનિ હિ કર્મણા નો બધ્યતે. ઇસ કારણ સે મુનિ મને યહાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જી સાધુ કી બાત નહીં કરતી, ઇસ કારણ સે શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવ વિરાજમાન સમ્યક દ્રષ્ટિ જી समीर सृष्टि जी उतना ही नहीं लिया। शुद्ध स्वरूप में जो विराजमान हो गए हैं ऐसे समीर दृष्टि जी ज्ञानावरण आदि कर्म से नहीं बंधता है। पहले तो वो स्थापित कर दिया कि सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, इसलिए वो कर्म से नहीं बंधते। ज्ञानावरण आदि मैंने आठों प्रकार के कर्म से नहीं बंधते, आदि मैं सभी ले लेता हूं। फिर क्यों नहीं बंधते हैं वो बात आगे समझाएंगे आचार्य से, आचार्य वो बात को समझाएंगे अवश्य, लेकिन पहले स्थापित कर दिया है। राजमल जी ने टीका करते हुए आचार्य देव का ये शब्द को मुख्य कर दिया कि मुनि कर्मणा नो बज्यते। तो सम्यक दृष्टि जी बंधन में आते नहीं है। कैसा है सम्यक दृष्टि जी? किसी कर्म कुरवाना होती निश्चय से कर्मजनित विषय सामग्री भोग रूप क्रिया को करता है तो भी अपी मैंने तो भी क्या कहते हैं भी मैंने निश्चय से कर्मजनित विषय सामग्री जो है कर्म के उदय से जो विषय की सामग्री का संयोग हुआ है उसको भोगने की क्रिया को करता हुआ दिखने में आता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यद्यपि भोगता है तो भी क्या लिखते हैं कि यद्यपि भोगता है तो भी कर्मजनित सामग्री में आत्मबुद्धि जानकर रंजक परिणाम का सर्वथा प्रकार स्वीकार छूट गया है। परित्याग का अर्थ क्या किया कि सर्वथा प्रकार परि मैंने सर्वथा प्रकार त्याग मैंने स्वीकार छूट गया है। यहां त्याग मैंने बाह्य त्याग हुआ है ऐसा नहीं बोला, स्वीकार नहीं है। किस प्रकार से स्वीकार नहीं है कि आत्मबुद्धि जान करके ये मेरी चीज है ऐसा नहीं जानते। कोई भी सामग्री में है तो उसके कर्मजनित, लोग कहते हैं कि ये इसकी है लेकिन उनको आत्मबुद्धि नहीं होती, वो पराई जानते हैं, वो अपने नहीं जानते हैं। कर्मजनित सामग्री में आत्मबुद्धि जानकर ये महत्व की बात क्या, मेरेपने की बुद्धि नहीं है, बुद्धि माने अभिप्राय, अपनापन का अभिप्राय नहीं है। क्यों कि शुद्ध स्वरूप विराजमान है ना, तो अपना अस्तित्व शुद्ध स्वरूप में समाप्त हुआ अनुभव गोचर करते हैं। जब अपना अस्तित्व दूसरी सामग्री में संयोग में है ही नहीं तो अपनापन का अनुभव कैसा। जब जहां मेरा अस्तित्व नहीं है वहां मेरापना का अनुभव कैसे होता है, होता ही नहीं है। कल्पना से जो करता है वो दुखी होता है लेकिन दूसरी चीज में किसी आत्मा का संयोग में किसी जीव का अस्तित्व नहीं होता है, न शरीर में होता है न विभाव में होता है न दूसरे संयोगिक पदार्थ में होता है। इसलिए कर्मजनित सामग्री में आत्मबुद्धि जानकर रंजक परिणाम का जो रंजक परिणाम है उदय भाव है तो तत्फल उसका फल लिया है उदय भाव और उसमें स्वीकार शुद्ध गया है, उसका स्वीकार करते मैं मेरे स्वरूप में विराजमान रहता हूँ। बाकी के द्रव्य भाव है वो तो मेरे से सर्वथा भिन्न होने से मेरे रूप में उसका स्वीकार मुझे नहीं हो सकता। एक मेरे सुखरूप स्वभाव जिसका ऐसा है, वो कैसे अर्थ निकालता है, एक शिला उसमें से निकाला, एक मैंने सुख रूप शील मैंने स्वभाव जिसका है ऐसा है, वो सम्यक दृष्टि का स्वभाव क्या है, एक सुख रूप स्वभाव है, निराकुल लक्षण सुख है, अनाकुल लक्षण सुख है, सुख रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है, दुखी नहीं होता, हृदय में दुखी नहीं होते। बहुत विचित्र परिस्थिति है, बाहर में इतना विरुद्ध दिखाव होता है, पूरा का पूरा विरुद्ध दिखाव। पुराणों में जो जो बातें आई हैं महापुरुषों, सम्यक दृष्टि पुरुषों की जो जो कथाएं आई हैं, उस कथा में तो बिल्कुल बाहर की परिस्थिति विरुद्ध दिखे, वो बाहर की परिस्थिति बाह्य दृष्टि का विषय है, अंतर्दृष्टि से सम्यक दृष्टि का स्वरूप दिखाते हैं आचार्य देव। अंतर्दृष्टि से जो सम्यक दृष्टि का स्वरूप दिखने में आए उनको दिखाते हैं, तो बाहर में तो तुमको ऐसा दिखेगा, भोग रूप सामग्री भी दिखेगी, भोगता हुआ भी दिखेगा, भीतर में कोई और बात है, तो भीतर में तो सुखरूप परिणमन करता है, संबंध रहित परिणाम चलता है, उनका अंतर्मुखी परिणमन चलता है, भावात्मक खुलते हैं, भावार्थ इस प्रकार है, यहां तक चला था आपको गत गुरुवार को, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के विभाव रूप मिथ्यात्व परिणाम मिट गया है, विभाव रूप परिणाम में विभाव रूप जो मिथ्यात्व का परिणाम है वो मिट गया है, ज्ञान साफ है, सम्यक ज्ञान है वो साफ एकदम सुखा है, भिन्न मैंने भिन्न, उसके मिटने से मिथ्यात्व विभाव मिटने से अनाकुलत्व लक्षण अतीन्द्रिय सुख अनुभव गोचर हुआ है। क्या बात किया अध्यात्म की, कि जहां तक मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम रहता है वहां तक आकुलता रूप दुखी अनुभव होता है जीव को, और जिस जीव को मिथ्यात्व मिटता है तो उसको अनाकुलत्व लक्षण अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, उस सुख को अनुभव करता है, तो उसकी उपादेयता उसके रहते उसको रहती है और विभाव के उपादेयता रहती उदय भावों की उपादेयता नहीं रहती है, क्योंकि एक साथ सुख का अंश और दुख का अंश दोनों एक साथ अनुभव में आने से एक का निषेध एक का आदर सहज हो जाता है, इस बस उसी का नाम वेद ज्ञान है, वेद ज्ञान विधि निषेध रूप होता है, और कैसा है सम्यक दृष्टि देखो, उसकी अंतरंग पहचान कराते हैं कि ज्ञानम सत तदपाश्च राग रसन है, ज्ञानमय होते हुए दूर किया है राग भाव जिसमें से ऐसा है। क्या है कि ज्ञानमय अपने को अनुभव करते हैं, तो पहले राग भाव में ज्ञान में राग का अनुभव करता था, वो दूर कर दिया। उपयोग भूमि में राग को लाते नहीं है, राग होता है, पूर्ण वितराग नहीं होने से राग होता है, लेकिन राग को उपयोग भूमि में नहीं लाते, उसको दूर कर दिया है। ज्ञानमय पने अनुभव में क्या है अपना, कि मैं ज्ञानमय हूँ, ऐसा अपना अनुभव है। तो मैं तो एकांत शुद्ध ज्ञानमय में हूँ, शुद्ध अनुभूति स्वरूप हूँ, एकांत अनुभूति स्वरूप हूँ, प्रत्यक्ष ऐसा ही हूँ, वो भी प्रत्यक्ष ऐसा हूँ, क्योंकि अनुभूति में प्रत्यक्ष अंश प्रकट है। अनुभूति की जो परिणति है उसमें प्रत्यक्ष अंश मौजूद प्रकट है, इसलिए प्रत्यक्ष में एकांत शुद्ध ज्ञानमय हूँ, अनुभूति स्वरूप हूँ, राग को दूर कर दिया है। राग है सही किंतु उसको दूर कर दिया है। इस कारण कर्मजनित है जो चारों गति की पर्याय, निश्चित तो चारों गति में पैदा होते हैं, नहीं इंद्र में भी होते, नारकी में भी होते, देव में भी होते और मनुष्य में भी, और चारों गति में संगनी पंचेंद्रियों को जो भी उदय होता है वो सब प्रकार का उदय संभवित है, उससे छोटे मोटे सब प्रकार का। चार गति की पर्याय तथा पंचेंद्रियों के भोग, वे समस्त आकुलता लक्षण दुख रूप है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा ही अनुभव करता है, उसको है लेकिन उसका दुख का अनुभव करता है, अंदर में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। एक साथ दो धारा, ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान धारा में सुख है, कर्म धारा में दुख है। इस कारण जितना कुछ साता असाता रूप कर्म का उदय, जितना जो जो प्रकार का उदय आता है, उससे जो कुछ इष्ट विषय रूप तथा अनिष्ट विषय रूप सामग्री, तो सम्यक दृष्टि के सर्व अनिष्ट रूप है, मैंने सभी है ही है। लोग जिसको इष्ट सामग्री कहते हैं उसको भी सम्यक दृष्टि अनिष्ट मानते हैं, अनिष्ट मैंने उपादेय मानते नहीं है, और अनिष्ट है वो तो अनिष्ट है ही, उसमें तो कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जिस प्रकार किसी जीव के अशुभ कर्म उदय, रोग शोक दारिद्र आदि होता है, सामान्य मनुष्य को सामान्य जीव को भी कर्म के उदय से पाप, अशुभ कर्म के उदय से, पाप के उदय से रोग आता है, दरिद्रता आता है, उसे जीव छोड़ने का बहुत ही करता है। अशुभ पाप का उदय किसी को अच्छा नहीं लगता, तो उसको छोड़ने के लिए बहुत ही करता है। उसको बिल्कुल जचता नहीं है, रोग कैसे मिट जाए, दरिद्रता का अभाव कैसे हो जाए, बहुत करता है, बहुत प्रयास करता है, परंतु शुभ कर्म के उदय नहीं छूटता है। लेकिन उदय जो उदय है वो तो होके ही रहता है, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र खुद भी कुछ कर सकता नहीं है, भोगना ही पड़ता है, इसलिए भोगना ही पड़े, क्या करें, रोग आता है भोगना पड़े, दरिद्रता आता है भोगना ही पड़े। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के भी क्या कहते हैं, जैसे संसारी जीव को भोगना पड़ता है, वैसे उसने भी अज्ञान भाव में तो कर्म बंधन किया। उदय आया तब अज्ञान भाव नहीं था, उदय आया तब सम्यक दृष्टि हो गया था, तो क्या हुआ कि उसको सम्यक दृष्टि को भी पूर्व में अज्ञान परिणाम के द्वारा बांधा है, जो कोई लिखा है। जो उदय आया है वो क्या है कि पूर्व में अज्ञान परिणाम के द्वारा बांधा है, जो सातारूप असातारूप कर्म दो प्रकार के बांधे थे, दोनों प्रकार के बांधे थे अज्ञान दशा में, तो साता के भी बांधे थे, शुभ भी बांधे थे और अशुभ भी बांधे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन हो जाता है तो पूर्व कर्म बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान भाव से जो कर्म बांधे थे वो तो सत्ता में रहे हैं, आत्मा ने पलटा खाया। क्या हुआ, पलटा तो आत्मा ने खाया है, और कर्म के उदय तो आएंगे तो आएंगे, वो तो जहां तक आयुष है निष्कर्म दशा है नहीं, इतने कर्म बांधे हैं कि एक समय भी उदय बिना का कोई जीव होता नहीं, आठों कर्म का उदय सभी को रहता है। उसके उदय अनेक प्रकार विषय सामग्री होती है, जो कर्म बांधे थे उसके कारण से बाहर में संयोग वियोग भी बना रहता है। उसे सम्यक दृष्टि जीव दुख रूप अनुभवता है, क्योंकि उपयोग जाता है उदय में, आकुलता और दुख का अनुभव आता है। उपयोग बाहर जाए, नियम से दुख का अनुभव हो गया, पुण्य का उदय हो तो भी दुख का, और पाप का उदय हो तो भी दुख का ही अनुभव होगा। सभी को दुख का होता है, लेकिन मिथ्यात्व में पुण्य के उदय में सुख का निश्चय कर लिया है, काल्पनिक गलत मिथ्या निश्चय किया है, तो कल्पना का सुख अनुभव करता है, परंतु वास्तव में सुख मिलता नहीं है। काल्पनिक सुख का अनुभव करता है, वास्तविक सुख मिलता नहीं है, इसलिए तृप्ति भी होती नहीं है, यही कारण है। उनको तो अपना शांति का आकुलता का घात दिखता है, दुख रूप अनुभवता है, छोड़ने को बहुत ही करता है, ये बात कहीं जगह बैठती नहीं है। जैसे चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, जब उनको शुभ कर्म का उदय आता है चक्रवर्ती पने का, तो वो स्वखंड साधने के लिए निकलते हैं, तो छोड़ने को कैसे जाते हैं। स्वखंड साधने को गए, उसमें छोड़ने की बात कहाँ आई है, तो निर्जरा करते हैं, तो पुरुषार्थ करते हैं, उसको पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बाहर में कैसा दिखे, को साधने को निकले, ज्ञानी की दृष्टि में क्या लगा, वो स्वखंड साधने को नहीं गए, अखंड को साधते थे, खंड को नहीं साधते थे, वो अखंड को साधते थे, लड़ाई लड़ते हुए भी, लड़ते लड़ते भी कर्म की निर्जरा करते हैं, लड़ते लड़ते कर्म की निर्जरा करते हैं। लड़ना कोई शुभोपयोग नहीं है, शुभ क्रिया भी नहीं है, फिर भी कर्म की निर्जरा करते हैं, नया बंध करते नहीं। क्या अलौकिक दशा है इस वक्त वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, उनकी भीतर की अलौकिक दशा का दर्शन कराते हैं। हाँ वो भी यही बात है कि तुम देखो वो अखंड को साधते हैं, तुम दर्शन करो इसका, इस रूप में दर्शन करो, दूसरे रूप में दर्शन नहीं करो। छोड़ने को बहुत ही करता है, मैंने पुरुषार्थ करता है, परंतु जब तक सपक श्रेणी चढ़े तब तक छुटना अशक्य है। वो चला था यहाँ तक तो चला था कि जब तक सपक श्रेणी चढ़े तब तक छुटना अशक्य है, जितना पुरुषार्थ हो गया तब छुटेगा। इसलिए परवश हुआ भोगता, अपना चले तो एक समय में पूर्ण शुद्ध हो जाना है, अपना चले तो एक समय में पूर्ण शुद्ध होना है, दूसरा समय किसी सम्यक दृष्टि को नहीं चाहिए, परवश होकर के भोगना पड़ता है। हृदय में अत्यंत विरक्त है, उसका हृदय देखो तो एकदम विरक्त है, क्योंकि दुख भाव है, वो दुख भाव को उपादेय कैसे माने। जो दुख का अनुभव करें उसमें रक्त कैसे होएगा, होगा कोई नहीं, हो नहीं हो सकता। तो कभी खुशी हुआ भी दिखता है, विरक्त कैसे कहते हो, कभी खुशी होता हुआ भी दिखता है उसको, आप कैसे कहोगे कि विरक्त है। तो वो दृष्टांत ऐसा है कि किसी एक आदमी को कोर्ट में जाना हुआ, न्यायालय, जो न्यायाधीश थे उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, मिनिमम सजा उतनी, मैक्सिमम सजा उतनी, गुना एक प्रकार का, एक ही गुना की सजा में वो अपना चाहे जैसा सजा दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा भी दे सकता है, कम से कम भी दे सकता है। अब उनको किसी को 6 महीने की सजा होने वाली थी, 6 महीना जेल में उसको डाल दो, और वही गुना में वो इतना भी कर सकता है कि कोर्ट चले वहां तक उसको यहाँ बैठना है, हैं? एक दिन में भी कोर्ट चले उतनी सजा यहाँ रहने का, फिर बाहर छुट्टा। सजा कहूंगी तो राजी हो गया कि नहीं हो गया, हैं? 6 महीने की जगह 6 घंटा के भी सजा नहीं रही तो राजी हो जाएगा। तो क्या सजा भोगना वो राजी होने का अवसर है क्या? सजा को भोगना ये खुशी होने का प्रसंग है क्या? तो फिर खुशी क्यों दिखता है? खुशी दिखाई देता है कि नहीं? खुशी बना तो दिखाई देता है, लेकिन उनको बहुत सजा होने वाली थी वो कम में हो गई। इसलिए वैसे उल्टे प्रसंग में उल्टा दिखा होता है, सजा के प्रसंग में खुशी उल्टा दिखा हो गया कि नहीं? ऐसे संसार में भी कहीं उल्टे प्रसंग उल्टे सुलटे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, हैं? देखो और एक दृष्टांत लेते हैं कि किसी हितेच्छु है अपने, हमेशा हमेशा अपना हित को देखता है, कभी ऐसा प्रसंग बन गया कि वो हितेच्छु ने अपने को मीठी भाषा में बुला के आपको ये काम नहीं करना है, फिर भी हम नहीं समझे, उसने कठोर भाषा में बोल दिया, मूर्ख है तुम लोग, मूर्ख है क्या, बेवकूफ है क्या, गद्दे हैं गद्दे। तो ये कहता है अपने को ऐसे नहीं बोलने वाला है, जब इतना कठोर बोलता है तो वास्तव में वो अपना बहुत हित का वांछक है, बड़ा नुकसान से बचाने के लिए बोलता है। फिर वो समझाए कि देखो इतना बड़ा नुकसान से तुमको बचा लिया, तो उसने जो भी कठोर वचन किया उसकी खुशी मनाएंगे या उसको उसमें दुख मनाएंगे या सुख मनाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, तो उसका दुख लगेगा। ऐसे बहुत से उल्टे सीधे बात होती है संसार में भी, लेकिन सही बात समझ में आए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां भी ये कहते हैं कि हृदय में अत्यंत विरक्त है इसलिए अरंजक है। हृदय में भीतर में एकदम विरक्त है, धक्का दुख लगता है, इसलिए अरंजक है, उसके परिणाम रंजायमान होते नहीं। इसलिए भोग सामग्री को भोग तो बंधेगा नहीं। यहां दृष्टांत कहते हैं, वो बात समझाने के लिए आचार्य देव ने खुद ही दृष्टांत किया है कि जिस कारण से ऐसा है, जिस कारण से ऐसा है, ऐसा ही है, जरा जोर देते हैं, क्योंकि लोगों को भ्रम होता है ना, इसलिए जोर दिया कि ऐसा है नहीं, ऐसा ही है, संदेह नहीं, शंका करने की बात नहीं है कि राजा की सेवा आदि से लेकर जितनी कर्मभूमि संबंधी क्रिया, क्रिया में रंजक होकर तन्मय होकर करता है जो कोई पुरुष, उसको जिस प्रकार राजा की सेवा करते हुए द्रव्य की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, खेती की, जैसे खेती करते हुए अन्न की प्राप्ति, अवश्य कर कर्ता पुरुष का क्रिया के फल के साथ संयोग होता है। क्या कहते हैं कि जो कर्म करता है उसको उसका फल मिलता ही है अवश्य, जो खेती करता है उसको अन्न मिलता है, सेवा करता है राजा के उसको पैसा मिलता है या जमीन मिलती है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो क्रिया को नहीं करता है उसको क्रिया के फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार समय दृष्टि जीव को बंद नहीं होता, निर्जरा होती है, अंतरंग से वो उसमें उलझते भिन्न रह जाते हैं, अपनत्व नहीं है, बस बात खत्म, अपनापन नहीं है, संबंध नहीं है। कारण की सम्यक दृष्टि जीव भोग सामग्री क्रिया का कर्ता नहीं है, भिन्नत्व है इसलिए उसका कर्ता नहीं है, उस परिणाम का भी कर्ता नहीं है, इसलिए क्रिया का फल नहीं है, क्रिया का फल नहीं है कर्म का बंध, वह तो सम्यक दृष्टि के नहीं है। इसलिए जो क्रिया का फल वो नहीं है, जो कर्म का फल होता है वो उसको, कर्म का कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है। देखिए कोई इसे डरते हैं कि क्या करें, हमको पूर्व में जो भी पाप के परिणाम हुए हैं उसका फल भोगना पड़ेगा तो क्या करेंगे, कोई ऐसा रास्ता है कि हमको दुख भोगना नहीं पड़े, कि हाँ सम्यक दृष्टि हो जाओ क्या, तुमने कुछ भी किया हो अज्ञान भाव से, हो सकता है कुछ भी अपराध कर लिया हो, अब तुमको मालूम हुआ कि अपराध का फल तो दुखदायी आता है और हमको दुख नहीं चाहिए, हम क्या करें, हो जाओ सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि होने से तुम भिन्न हो जाओगे, वो कर्म का फल आएगा, तुम भिन्न रह जाओगे, उसका दुख तुमको लगेगा क्योंकि तुम भिन्न हो जाओगे, भिन्न रह जाओगे तो उदय तो आएगा, वो तो कुदरती व्यवस्था है। लेकिन तुम अपनत्व छोड़ दिया, तुमको कुछ भिन्न हो गया तो कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात हो जाएगी तो भी सुख का अनुभव होगा। दृष्टांत से दृढ़ करते हैं कि जिस कारण से पूर्वोक्त अनेक प्रकार की क्रिया को करता हुआ फल के अभिलाषा करके क्रिया को करता है, ऐसा कोई पुरुष है वो क्रिया के फल को प्राप्त होता है, उसको तो अभिलाषा से किया है तो उसका फल भोगेगा, अनुभव होगा। भावार्थ इस प्रकार है कि जो कोई पुरुष क्रिया करता है निर्विलास होकर करता है उसको तो क्रिया का फल नहीं है, इसलिए सम्यक्त्व अवस्था में क्या कहा कि सम्यक्त्व अवस्था में सम्यक दृष्टि जीव निर्विलास क्रिया करता है, अभिलाषा रख करके क्रिया नहीं करता। क्या अभिलाषा? सुख बुद्धि, मुमुक्षु की भूमिका में वो पुरुषार्थ किया है कि मुझे कहीं भी आशा अपेक्षा सुख की अल्प सुखेच्छा भी नहीं होनी। बाद में तो पदार्थ का निर्णय होगा, बाद में अनुभव होगा, तो अनुभव में तो कोई अभिलाषा से क्रिया होती। ये कार्य करूं तो इसका फल ऐसा आए तो मैं सुखी हो जाऊं, वो बात नहीं है। गोपाल देव के पत्रों में तो स्पष्ट आता है कि हम व्यापार करते हैं लेकिन कोई वांछा से करते हैं कि भाई पैसा मिलेगा और इतना हम सुखी हो जाएंगे, वो चीज लाएंगे वो चीज लाएंगे, वो मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा और सुख चैन से भोगेंगे, ऐसा होता कोई वांछा नहीं है। व्यापार करते हुए भी कोई वांछा नहीं है। सब कोई पूछेगा कि भाई वांछा नहीं है तो व्यापार क्यों करते हो? जो पूर्व कर्म की निर्जरा करने के लिए करते हैं, संसार की दुकान बंद करने के लिए व्यापार चलता है, अब संसार की दुकान चलाने के लिए व्यापार चलता तो इसलिए पूर्व कर्म का उदय चलता है, निरभिलाष होकर के क्रिया होती है, व्यापार व्यापार की गति से होता है। वो तो दुकान में नहीं बैठे हैं, व्यापार में नहीं बैठे हैं, वो आत्मा में बैठे हैं। तो बहुत समर्थ दृष्टांत देते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव युद्ध के मैदान में नहीं खड़े हैं, वो आत्मा में खड़े हैं, उसी वक्त भी वो आत्मा में खड़े हैं। तो ऐसे उनके अंतरंग दशा देख करके उस दशा को समझने वाले उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, ऐसी बात है। वो बात दिखाने के लिए निर्जरा अधिकार है क्योंकि जीव अनंत काल में यहाँ भुला हुआ है। कहाँ भुला हुआ है? इस जगह पे भुला हुआ है कि सम्यक दृष्टि को पहचाना है। अटपटी दशा होने से पहचाने में भूल हो जाती है और जीव मौका चुक जाता है। तो आचार्य देव ने करुणा करके ये निर्जराधिकार लिखा, सम्यक दृष्टि को पहचान कराने का वहाँ अभिप्राय है। देखो बात तो ऐसी सब प्रकार की होगी, लेकिन उसके अंतरण को पहचानो तो तुम्हारा भी निबेड़ा हो जाएगा।
Yeah.